शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। आप पिछले 2-3 दिनों से बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे हैं, जिससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिस स्थान पर आप आए हैं ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई साधु महात्मा बैठा हो, कोई गुरु गुसाई बैठा हो जो शास्त्रों का अध्ययन कराता हो, कोई सत्संग चल रहा हो या पूजा पाठ आदि चल रहा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जिसे हम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में मानते हैं, जहां आध्यात्मिक बातें बताई जाती है। और अध्यात्म शब्द क्या संकेत देता है? आत्मा का अध्ययन, वो अध्यात्म है, जहां आत्मा रूह का अध्ययन होता है, स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट का अध्ययन होता है, स्टडी होता है। तो आध्यात्मिकता में आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, कर्म की पहचान, और एक बहुत बड़ा विषय जो अभी मैं लेने जा रही हूं वो है समय की पहचान। समय क्या कह रहा है, जो आपका भी विषय है, कॉल ऑफ टाइम। व्हाट डज टाइम डिमांड फ्रॉम अस नाउ? समय क्या चीज है? कहते हैं कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब समय नहीं था। समय सदा है और रहेगा। और दूसरी कहावत है कि एक बार अगर समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आता। समय को आप रोक नहीं सकते हो। समय के बारे में बहुत सी बातें कही गई है, तो समय क्या चीज है? ऐसा कभी समय नहीं था जब समय नहीं था। इसका मतलब कि समय एक लकीर की तरह नहीं है कि यहां शुरू हुआ और यहां पूरा हुआ। समय सदा था, है और रहेगा। और जो चीज सदा थी, है और रहेगी वो लकीर की तरह नहीं होती है, वो साइकिल की तरह होती है। क्योंकि जब हम साइकिल की बात करते हैं, वो साइकिल निरंतर चलती रहती है, जिसमें न बिगिनिंग है न एंड है, एक ट्रांजिशनल चेंज सदा ही रहता है। लेकिन एक समय आता है जब ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। इसीलिए चेंज की जहां बात आती है तो यही कहा जाता है मैनेजमेंट में, दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग, नथिंग इज स्टक समवेयर, इट्स चेंजिंग, इट्स मूविंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट चेंज। चेंज नहीं होता, चेंज सदा है। इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो ये हम समझेंगे कि समय एक चक्र की तरह है। घड़ी हम देखते हैं 60 सेकंड एक मिनट में होते हैं, फिर 61वां मिनट एक हो जाएगा, तो 60 सेकंड का एक मिनट, फिर 1 2 3 4 60 तक आएगा। एक मिनट में 60 सेकंड, इसी प्रकार एक घंटे में 7 मिनट, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कैसे वो घड़ी गोल घूमती रहती है और फिर एक घंटा पूरा हुआ, फिर वही 60 मिनट। हम घड़ी में भी देखते हैं 12 नंबर की घड़ी है, 12 डिजिट्स है, इसमें भी हम पॉजिटिव लेते हैं कि अगर घड़ी रुक भी गई तो भी दिन में 2 बार तो सही टाइम देती है। अगर रुक भी गई ना तो ट्वाइस अ डे वो समय फिर से आता है और वो घड़ी सही टाइम देती है। मानो 4 बजे रुक गई गाड़ी घड़ी, तो फिर जब 4 बजेंगे तो वो तो सही टाइम होगा, फिर 12 घंटे के बाद 4 बजेंगे फिर वही समय सही होगा। तो इसीलिए एक चक्र है ये। इसी प्रकार हम दिन और रात का भी चक्र देखते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। ये 24 घंटे का एक चक्र है, 24 घंटे के बाद फिर वही दिन होगा। इसी प्रकार हम ऋतुओं को देखते हैं, सीजन्स देखते हैं, स्प्रिंग समर, फिर रेनी सीजन, फिर ऑटम विंटर, ये सभी जो भी हमारे भारत में भी सीजन्स या जो सीजन्स हम मानते हैं वो सब फिर वापस आती है। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ भी देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ, कैसे बुढ़ापा आता है, फिर वही बच्चा बना, शरीर त्यागा, इट्स अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो जब इन साइकिल्स को हम हर पल पल पर देखते हैं, अब इसको हम बेहद रूप में देखें, और बेहद रूप में क्या देखेंगे, अनलिमिटेड डे एंड नाइट, तो उसकी भी तो लिमिट होगी और उस लिमिट में के बाद फिर रिपीट होगा। तो ये अनलिमिटेड डे एंड नाइट, जिसको हम ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं शास्त्रों में, ये भी एक चक्र है। और इसमें हमें देखना है कि हम अभी कहाँ हैं, क्योंकि समय का बड़ा महत्व है। तो जैसे कर्मों को हमने महत्व दिया, तो कौन सा कर्म कब करना है उसका भी अपना महत्व है। वो कर्म समय पर नहीं किया, बाद में किया, इट बिकम्स टू लेट। कई बार ऐसी बीमारियां होती है, कैंसर का रोग, फर्स्ट स्टेज में ध्यान नहीं दिया, सेकंड स्टेज में भी ध्यान नहीं दिया, अनबेले रहे, निग्लेक्ट किया, फिर वो थर्ड फोर्थ स्टेज तक पहुंच जाता है तो डॉक्टर भी कहेगा इट्स टू लेट। समय के लिए यही कहा जाता है, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। सूर्यास्त हो गया या बारिश आ गई, आप सोचो कि हम हे बनाए हैं, बीच से कैसे होगा। तो इसीलिए समय का अपना महत्व है। तो अभी समय क्या कह रहा है, कौन से समय से हम गुजर चुके हैं और अभी कौन सा समय है और इसके बाद क्या समय आने वाला है, तो आज हम इसको देखेंगे। और उस समय के अंतर्गत जो चक्र है उसमें कौन भागीदार है। वास्तव में 3 चीजों का गायन है, एक है पुरुष, दूसरी है प्रकृति और तीसरा है परम पुरुष। पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, ये 3 इस खेल में हैं। लेकिन खेल 2 के बीच में है, 3 के बीच में नहीं है। 3 का इंटरवेंशन अपने समय पर होता है। जैसे क्रिकेट मैच में हम देखते हैं 2 साइड्स हैं, फिर जो एम्पायर है वो तो एक साक्षी है, एम्पायर रेफरी या जो भी होते हैं मैच में दे हैव टू डिसाइड, परंतु खेल दो के बीच में है। इसी प्रकार खेल दो के बीच में पुरुष और प्रकृति इन दो का खेल है और पुरुष और प्रकृति के खेल में यह संसार का चक्र विचरण करता है और परम पुरुष का इंटरवेंशन हर वक्त नहीं होता है। जैसे प्रेसिडेंट का इंटरवेंशन तब होगा, नहीं तो डेमोक्रेसी में ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, प्रजा ही अपना नेता चुनती है, वही राज्य करते हैं, वही लॉ बनाते हैं, सब कुछ पार्लियामेंट में होता है, प्रेसिडेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। बट व्हेन डज द प्रेसिडेंट इंटरवीन, उसी समय जब अराजकता आ गई और अराजकता आई गवर्नर्स रूल प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, वो सरकार डिसॉल्व हो गई। इसी प्रकार परम पुरुष यानी परमात्मा उनका इंटरवेंशन कब होता है, कहा जाता है जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं और अधर्म का नाश कर सब धर्म की स्थापना करता हूं, तो उनका अपना समय है। बाकी खेल दो के बीच में है और इस खेल के अंतर्गत हम देखते हैं, इस खेल में खेल माना खेल, इसीलिए किसी ने कहा व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, तो जीवन एक गेम है, एक खेल है। कोई इसे संघर्ष मान ले, कोई इसे स्ट्रगल मान ले, लेकिन खिलाड़ी तो कहेगा खेल है। और खेल माना कभी हार कभी जीत, हर वक्त तो जीत नहीं हो सकती और हर वक्त हार भी नहीं हो सकती है, और हार या जीत दोनों में खिलाड़ी को समान रहना पड़ता है। अगर हार में निराश हो गया तो वो निराशा फिर आगे खेलने कैसे देगी, और अगर जीत गया और इतना अभिमान आ गया तो फिर तो और आगे खेलना है, इतना अभिमान भी नहीं करना है, फिर हार सकता है। इसलिए इस खेल में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए कि खेल के लिए खेलना है, भले जीत के लिए खेलना होता है, हार के लिए कोई नहीं खेलता है। आजकल तो कलयुग की दुनिया में हार के लिए भी खेलते हैं ना, व्हाट इज गेम फिक्सिंग, गेम फिक्सिंग यही है ना, हार के लिए खेल रहे हैं और हार के लिए खेलेंगे, हारेंगे तो 1 करोड़ मिलेगा, जीतेंगे तो 1 लाख मिलेगा, तो हारो ही ना। सो इजी टू बी डिफीटेड टू लूज, लेकिन वास्तव जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसमें जीत के लिए खेला जाता है, पर अगर हार गए तो दुखी नहीं होते हैं क्योंकि खेलना है। तो ये संसार भी एक खेल है, जीवन एक खेल है, ये चक्र भी एक खेल की तरह है, और इस खेल में आत्मा और शरीर पुरुष और प्रकृति का खेल है। और जब पुरुष प्रधान है, पुरुष की जीत है, प्रकृति सेवक के रूप में है, तो यह संसार सतयुग है, मानव देव है, नर नारायण है, नारी लक्ष्मी है, क्योंकि प्रकृति पर इंद्रिय जीत बनते हैं, इंद्र माना जो इंद्रिय जीत हो, तो इंद्रिय जीत बनना माना प्रकृति पर जीत, प्रकृति सेवक बन के हर कार्य करती है, और अगर प्रकृति सेवक है तो बहुत सुखदाई है। इसीलिए प्रकृति के तत्वों के लिए कहा जाता है लाइक फायर, फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। सर्वेंट बन करके हमें अग्नि प्रकाश देती है, गर्मी देती है, तेज देती है, वो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, जीवन के लिए, But it can become a bad master when it goes out of control. ड्राइवर का अपनी गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है तो गाड़ी चलाना खेल है, इट्स लाइक अ स्पोर्ट. पर वो तब तक है जब ब्रेक पूरा कंट्रोल में है. अगर ब्रेक कंट्रोल से बाहर गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, हो गई गाड़ी, ब्रेक नहीं लगा पा रहे हैं या ब्रेक फेल हो गई, तो ड्राइवर इज टेकन ओवर बाय द कार एंड कार बिकम्स द मास्टर. जहां ले जाए वो तो कभी भी एक्सीडेंट होगा. इसी प्रकार जब पुरुष प्रकृति पर हावी है, मास्टर है, तो ये संसार स्वर्ग है, सतयुग है. लेकिन समय अंतराल ये स्थिति आती है, आत्मा देह बदलती रहती है, देह में आती जाती है, कर्म करती जाती है. वो समय आता है जब आत्मा खुद को भूल जाती है और भूलने के कारण अपने को देह समझने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप देह मालिक हो गया, इंद्रियां मालिक हो गई, और इंद्रियां मालिक होकर के मन को अपने वश में रखती है. नहीं तो मन इंद्रियों को वश में रखे. मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि मन को वश में रखे, मन इंद्रियों को वश में रखे. तो ये जीवन एक सुंदर वरदान भगवान का हम अनुभव करेंगे. परंतु अगर शरीर मालिक हो गया, इंद्रियां मालिक हो गई और मन उनका गुलाम हो गया, तो क्या होगा? ये विकारों की प्रवेशता होती है. ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या है? ये इंद्रियों का आकर्षण है. काम वासना क्या है? काम वासना सेंस ऑफ टच. अगर उसका अगर हम लिमिटेड फॉर्म देखें, सेंस ऑफ टच है. और वो ही सेंस ऑफ टच कहां पहुंच जाता है और कैसे ये चमड़ी आकर्षित करती है? हम एक म्यूजियम में जाते हैं, उस म्यूजियम में लिखा रहता है प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच, सब जगह लिखा रहता है. हम पढ़ते भी हैं फिर भी हाथ लगाने की कोशिश करते हैं. क्यों हाथ लगाते हैं? डोंट टच तो डोंट टच ना. Why don't you obey the orders? लेकिन ये सेंस ऑफ टच अट्रैक्ट्स. तो परिणाम स्वरूप उसका विकराल स्वरूप जो आज हम देख रहे हैं, काम वासना, रेप, मास रेप, क्या नहीं आजकल हम सुन रहे हैं, बलात्कार, ये सब स्टार्ट फ्रॉम सेंस ऑफ टच. ये काम वासना का रूप बन गया, इतना बड़ा पाप बन जाता है. फिर क्रोध का विकराल स्वरूप, क्रोध का विकराल अरगन से शुरू होता है, अभिमान से शुरू होता है, ईगो से शुरू होता है. और कहां जाके पहुंचता है ये क्रोध? हत्या. दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ एंगर. ये भी एक पाप का रूप बन जाता है. लोभ, और वो क्रोध, क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? वो सेंस ऑफ, सेंस ऑफ आईज, ये साइट, देखा हमने, देखा बस एकदम आग बबूले हो गए, गुस्सा आ गया. ये आंखें, मन का कहते ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. लेकिन फेस में भी ये आंखें इंडेक्स ऑफ द माइंड है. इसीलिए दिखाते कि कैसे सूरदास ने अपनी आंखें ही फोड़ दी, क्योंकि यही कारण बनते हैं, यही काम वासना लाते हैं, यही क्रोध लाते हैं. तो आंखें फोड़ दी. लेकिन आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है. कहा जाता है आंखें हैं तो जहान है. परंतु इस दृष्टि को बदल देते हैं, देह की वजह आत्मा को देखते हैं, तो दृष्टि शुद्ध हो जाती है. तो देह के बिना बजाय आत्मा को देखा है, सारे विकार खत्म हो जाएंगे. तो लोभ, लोभ हम देखते हैं जीभ रस. ये जीभ इंद्री का ऐसा रस है. और आप डॉक्टर्स हैं, आप अपने पेशेंट्स को कहते होंगे, डाइट भी प्रिस्क्राइब करते होंगे. अब वो इतना डाइट जो बताएंगे, इतना ब्लेंडेड, मना एकदम उसमें कोई स्वाद ही नहीं होगा. तो कई पेशेंट्स कहते कैसे हम खाएंगे, कैसे खाएंगे? तो पेट को जो पसंद है ना, वो जीभ को पसंद नहीं है. और जो जीभ को पसंद है वो पेट को नुकसान करता है. पर टेस्ट बड्स तो केवल जीभ तक ही तो होते ना, नीचे तो और तो है नहीं जो टेस्ट का पता भी चले, केवल जीभ तक है. तो जीव के आकर्षण में मनुष्य कितना लोभ रखता है। तो लोभी नर कंगाल है, चाहे धन का लोभ चाहे किसी का भी लोभ। हम देखते हैं कैसे इंसान लोभी है तो वो कंगाल है, क्योंकि सदा ये चाहिए 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 उसको रहता है, क्योंकि पेट को ज्यादा नहीं चाहिए। अगर पेट के लिए इंसान मेहनत करता है तो समझ सकते हैं, पर पेट के लिए नहीं मेहनत होती है, पेट तो कोई ज्यादा नहीं चाहता है, लेकिन पेटियां, जितनी पेटियां भर दो, भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार क्या है? इसलिए ये लोभ वृत्ति जीव से ही शुरू होती है। फिर मोह, मोह कहां से आता है? ये नाक, स्मेल, ये स्मेल हमको वो ही चाहिए, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू समथिंग, और वो सेंस ऑफ स्मेल विच लीड्स टू अटैचमेंट। एंड ईगो, ये कान, मेरे लिए इसने ये क्यों कहा, क्या समझता है, मैं भी कोई कम हूं क्या, एकदम कान खुल जाते हैं, है ना। ये कान श्रवण किसके लिए है? अच्छी बातें सुनने के लिए। अगर बुरी बात गई भी तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दो, दो कान किस लिए? अगर गया भी तो यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन कान खड़े हो जाते ईगो में। अब ये जो हम देख रहे हैं, ये इंद्रियां मालिक हो गई है और मन उनके वशीभूत हो गया है, इसीलिए यही शिकायत है, क्या करें, मन तो बड़ा चंचल है, मन तो पापी है, दुष्ट है, नीच है, घुड़ा है, क्या क्या एडजेक्टिव्स दे दिए उनको। लेकिन अगर हम आत्मा अपने आप को निश्चय करते और इंद्रियां मेरी सेवक है, मैं आत्मा रथी हूं, ये शरीर मेरा रथ है, तो आत्मा सहज विकारों को जीत सकती है। तो समय अंतराल धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं और देह समझने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप ये संसार नरक बन जाता है। अब इसको फिर से स्वर्ग बनाना है तो कौन, तो इंटरवीन करना पड़ेगा परमात्मा को, और परमात्मा कहते हैं मैं आता हूं और ये ज्ञान तुम्हें देता हूं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो अभी स्वयं परमात्मा हमें दे रहे हैं। और जब हम महसूस करते कि ये सत्य ज्ञान हमें मिलता है तो हमारा जीवन सहज ही बदल जाता है। तो हम देखें, ये संसार एक चक्र के समान है। तो जो सतयुग त्रेता था वो बीता, द्वापर कलयुग भी बीता। अभी अगर हम किससे पूछते हैं हम किस युग में हैं, तो सभी क्या कहते हैं, कहाँ हैं, कौन से युग में हैं, कलयुग है ना, कहेंगे ना, क्या सतयुग, किसमें बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। आप कहेंगे हम ज्ञान सरोवर में बैठे, तो जैसे सतयुग में बैठे हैं, हाँ कई कह सकते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन दुनिया की स्थिति जब हम देखते हैं चारों तरफ, तो वो तो कलयुग ही है। और अगर कलयुग को और आगे कहें तो घोर कलयुग है। घोर कलयुग कहना ये अतिशयोक्ति नहीं है। जो धर्म ग्लानी की निशानियां शास्त्रों में दिखाई है वो सब अभी मौजूद है, सारी की सारी ग्लान मौजूद है। अब उसमें जाएंगे और आधा घंटा चाहिए, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि ये जो समय है ये घोर कलयुग का है। जैसे घोर अंधियारी रात होती है, लेकिन उस अंधियारी रात में भी हमको ये चिंता नहीं है कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि सवेरा आएगा, सदा ही नहीं ये घोर अंधियारी रात रहेगी। तो अभी अगर कलयुग है तो जरूर कलयुग के बाद सतयुग को आना है, और सतयुग को आना है फिर से वो स्वर्ग को आना है। तो वो स्वर्ग आना है, वो स्वर्ग में जहां हम कहते 33 करोड़ देवी देवताएं रहते थे, वो 33 करोड़ देवी देवताएं भारत में ही तो थे, आज हम उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करते सिद्ध है कि वो यहीं तो थे, स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है या नर्क कहीं नीचे नहीं है, सब इस धरती पर है, लेकिन समय अलग अलग है। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं होगा, भले हम देखते हैं हेमिस्फीयर में अर्थ में हम देखते हैं एक तरफ दिन है तो एक तरफ रात है, पर जहां दिन है वहां तो रात नहीं होगी ना। इसी प्रकार सतयुग त्रेता जिसको हम हेविन कहते हैं वो दिन है और द्वापर कलयुग रात है। सतयुग त्रेता माना सतयुग जो सत्य का युग है, त्रे माना तीन हिस्सा अभी बाकी है सृष्टि चक्र के, और द्वापुर द्वापुर माना दो पुर हो गए, जैसे द्वेष भावना द्वैत आ गया, जैसे दो हाथ होंगे तो ताली बजेगी, अगर हाथ ही एक है तो ताली कैसे बजेगी, दो हाथ से ही ताली बज सकती है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता में एक ही धर्म है जिसको हम आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं, और ये भारत की संस्कृति है। भारत इतना ऊंचा था जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश हमारा, हम इसकी महिमा गाते हैं। ये कब की महिमा है, अभी तो वो स्थिति कहाँ है। तो ये सतयुग त्रेता का पीरियड था जब मनुष्य देव रूप में था, परंतु कई कहते हैं अगर देव रूप में थे फिर कहाँ गए सारे देवताएं, कई ये प्रश्न करते हैं। तो जब हम पूछते हैं कहाँ गए देवताएं तो कई समझते हैं ऊपर चले गए, इतने 33 करोड़ देवी देवताएं सब कहाँ चले गए, तो ऊपर तो नहीं गए पर वही फिर मनुष्य रूप में आ जाते हैं, वही पूज्य फिर पुजारी बन जाते हैं और अपने पूज्य रूपों की पूजा करते हैं। आज भी हम किसी से पूछेंगे आपका नाम क्या है तो कोई कहेगा मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नाम हाँ सीता है, मेरा नाम नारायण है, मेरा नाम राम है, या जो भी ये नाम देंगे ये देवी देवताओं के नाम हैं, जो जिस एक एक नाम के पीछे एक एक गुण समाया हुआ छिपा हुआ है, ये भारत की संस्कृति है। तो इसलिए जैसे ही हम खुद को भूले तो ये हम अपने को देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, क्योंकि विकारों की प्रवेशता हुई, और जब मनुष्य बने तो क्या नाम देंगे, धर्म ही बदल गया। फिर जो स्थान है उस स्थान से नाम ले लिया, क्योंकि सिंधु संस्कृति थी और वो सिंधु संस्कृति पर बसे थे, अर्थात सिंधु सिविलाइजेशन, सिंधु नदी, जिसके नाम से फिर हिंदू पड़ा और हिंद महासागर, हिंद के नाम से फिर इंडिया पड़ा, इंडस कह दिया उसको। ये इंडिया शब्द भी कहां से आया, इंडस सिविलाइजेशन से, जो सिंधु संस्कृति कहलाती थी। एक भारत ही है जिसके देश के इतने नाम हैं, कहां भारत कहा, कहां हिंदुस्तान कहां इंडिया का, अन्य किसी देश के ऐसे अलग अलग नाम नहीं होते हैं, एक ही नाम होता है। जापान है तो जापान ही है, भले एक्सेंट दूसरा हो सकता है लेकिन कोई और नाम तो नहीं होगा ना। इंग्लैंड है तो इंग्लैंड ही है, लेकिन भारत के ये तीन नाम क्यों, कोई उसको हिंदुस्तान कहता है, कोई उसको इंडिया कहता है, कोई उसको भारत कहता है, क्योंकि ये जो हिंदू शब्द भी वो संस्कृति के नाम से आया है। जितने भी अन्य धर्म है वो धर्म पिता से आए हैं, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म हुआ, बुद्ध से बौद्ध धर्म हुआ, लेकिन हिंदू शब्द कहां से आया, इस पर आज कितने झगड़े होते हिंदू, क्योंकि ये ओरिजिनल सनातन संस्कृति है जो आत्मा की, जैसे हम सृष्टि पर आते भारत जो अविनाशी खंड है वो देवी देवताओं की दुनिया है, वो जहां प्रकृति का सुंदरतम स्वरूप है, लेकिन धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आता है। जो आज हम कलयुग के अंत में पहुंचे हैं और द्वापर युग और कलयुग को हम नर्क कहते हैं, तो नर्क कहीं नीचे नहीं है, न स्वर्ग ऊपर है न नर्क नीचे है, दोनों ही सृष्टि रंगमंच पर हैं, लेकिन अपना अपने समय पर हैं। और अगर हम देखें इसकी ड्यूरेशन कितनी है, कई समझते पहले तो कुछ भी नहीं था, हर एक धर्म में अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन विज्ञान में एक प्रश्न अभी भी है जिसका हल विज्ञान नहीं दे सकता है, हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस। लाइफ विल कम ओनली फ्रॉम लाइफ, लिविंग कैनॉट कम फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग विल कम ओनली फ्रॉम लिविंग। अब ये इतना बड़ा सत्य है जिसके जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो नॉन लिविंग और लिविंग ये दोनों एग्जिस्टेंस है जरूर, इसलिए कहा पुरुष प्रकृति और परम पुरुष तीनों का इटर्नल एग्जिस्टेंस है। आप कहेंगे प्रकृति में भी लाइफ है पर वो फिजिकल लाइफ है, फिजिकल लाइफ खत्म भी हो जाती, लाइफ से लाइफ, चलो सेल से सेल आया, पर आत्मा खत्म कभी नहीं होती है। आत्मा प्रकृति के संग में जलती नहीं, कटती नहीं, सूखती नहीं, गीली होती नहीं। प्रकृति में परिवर्तन आता है लेकिन आत्मा में वो बाह्य परिवर्तन जलने का, कटने का, डूबने का, सूखने का वो नहीं होगा। इसीलिए आत्मा को अविनाशी कहा। प्रकृति भी अविनाशी है लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है, सत्व से रजो, रजो से तमो होती है, और आत्मा उस प्रकृति के संग में उसकी स्थिति सत्व रजो तमो में आती है, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है, प्रकृति भी अविनाशी है, इसलिए तीनों ही सत्य है। तो ऐसा कभी समय नहीं था जब ये तीनों नहीं थे। इसीलिए हाउ डिड लाइफ कम इनटू एग्जिस्टेंस, इट केम फ्रॉम लाइफ, बिकॉज लाइफ इज ऑल्सो इटर्नल। आत्मा भी सदा एग्जिस्टेंस में है। कईयों के मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा को किसने बनाया। अगर परमात्मा को किसने बनाया होता, पहले नहीं है परमात्मा फिर उसको किसने बनाया, तो वो जिसने बनाया उसको किसने बनाया, यू नो, परमात्मा को किसने बनाया फिर उसको किसने बनाया जिसने परमात्मा को बनाया है। इसीलिए मैटर के लिए भी कहा जाता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इज फॉर्म फ्रॉम वन टू द अदर, बट टोटल सम रिमेन्स द सेम। दिस इज सच अ strong fact which not only science proves but also spirituality proves, कि आत्मा परमात्मा प्रकृति इन तीनों का एक सुंदर समन्वय है जिसको हमें समझना होगा। और मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं, लेकिन वो साइकिल की ड्यूरेशन तो चाहिए ना, और फिर उस ड्यूरेशन पूरा होने के बाद से रिपीट, बिकॉज इट्स अ साइकिल, साइकिल इज नो बिगिनिंग नो एंड। तो ट्रांजिशनल चेंज है बट ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हैपेंस ओनली आफ्टर एंड ऑफ कलयुग, व्हेन गॉड हिमसेल्फ इंटरवीन्स एंड चेंजेस फ्रॉम नाइट टू डे। और वो ड्यूरेशन कितनी होगी जिसको परमात्मा ने रिवील किया है, इट्स अ साइकिल ऑफ जस्ट 5000 ईयर्स, जिसमें 2500 ईयर्स जो है वो एक ही धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और आधे के बाद जैसे आत्मा खुद को भूल जाती है, खुद को देह समझने लगती है, तब सृष्टि में हलचल होती है। हर धर्म में ये मान्यता है, क्रिश्चियनिटी भी ये मानता है कि गॉड ने एडम और ईव को पैराडाइज में भेजा, लेकिन उनको ये एक निर्देश दिया, एक फॉरबिडन फ्रूट है ये नहीं खाना, डोंट ईट दैट फ्रूट। लेकिन बहुत 1000 साल वो बताते हैं फर्स्ट टेस्टमेंट में कि 1000 साल तक उस पैराडाइज को भोगा, और उसके बाद थोड़ा संकल्प आया कि हम क्यों ना ये फ्रूट खाएं, तो परमात्मा को डिसोबे किया और परिणाम स्वरूप दोनों को नर्क मिला। बड़ी कहानी है कि नर्क क्या मिला, दोनों को श्राप मिला, फॉरबिडन फ्रूट खाया क्योंकि देखा कि वी आर नेकेड, और उसके बाद काम वासना शुरू हुई, और फिर दोनों को श्राप मिला कि स्त्री को श्राप मिला कि आप 9 मास गर्भ में बच्चे को पालोगी, और पुरुष को श्राप मिला कि आप उस बच्चे की पालना करने लिए खून पसीना ही करोगे। मानो ये दोनों को श्राप मिला, और कई समय से वी आर, वो जो श्राप एडम ईव को मिला ना वो हम भोग रहे हैं। दिस इज व्हाट सम बिलीव। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच कोई फॉरबिडन फ्रूट था, तो ये फॉरबिडन फ्रूट कौन सा था, बॉडी कॉन्शियसनेस, जिस बॉडी कॉन्शियसनेस में आके अपने आप को देह समझा, दूसरे को देह समझा, परिवर्तन हुआ, और ये विकारों की प्रविष्टता. व्हाट इज विकार? विकार क्या चीज है? विकार माना कमजोरी. इट इज अ वीकनेस. जैसे हम मकान मालिक एक मकान बनाता है, वेरी स्ट्रांग मकान, लेकिन 50 साल के बाद 100 साल के बाद पुराना तो होगा ना, उसमें दरारें पैदा हो जाती, क्रैक्स आते हैं, और वो क्रैक को हिंदी में विकार कहते हैं. इट्स अ वीकनेस, क्योंकि समय अंतराल परिवर्तन आता है. इसीलिए प्रकृति की जब बात आती है तो विज्ञान और अध्यात्म में लड़ाई है. विज्ञान कहता है सीइंग इज बिलीविंग, जो दिखाई देता है वही सत्य है. अब दिखाई देता है तो सत्य है ना, ये दीवार क्यों नहीं सत्य है? लेकिन अध्यात्म कहता है जो दिखाई देता है ना वो सब असत्य है. सी द डिफरेंस. जो दिखाई देता है वो सब असत्य है. क्यों असत्य है? क्योंकि सत्य की डेफिनेशन दूसरी है विज्ञान अध्यात्म में. जो दिखाई देता है वो सब असत्य है, क्योंकि बदलता रहता है, बदलता रहता है. जो चीज परिवर्तित होती रहती है अध्यात्म में वो असत्य है. जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो एक सच अगर वो बोले तो सच को जो बता रहा है उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, जो सच है वो है. लेकिन वो एक सच को छिपा रहा है और झूठ बोल रहा है, तो उस झूठ को साबित करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे. और कई बार ऐसे होता है वो पहला झूठ उसको याद करना पड़ता है, क्या क्या झूठ बोले मैंने, ताकि उसके साथ मैच करे. पर कई बार भूल गया तो पहला झूठ और अंतिम झूठ में रात दिन का अंतर हो जाता है, पकड़ा जाता है. झूठ के पैर नहीं होते. तो सत्य की परिभाषा अध्यात्म में क्या है? जो नित्य है, जो अविनाशी है, जो अपरिवर्तनशील है, जो अनादि है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है. और जो बदलता रहता है वो सब असत्य है. तो प्रकृति में एक भाग सत्य है कि प्रकृति का की न उत्पत्ति है न अंत है, वो सत्य है. लेकिन जो दूसरा भाग है कि वो परिवर्तनशील है, वो अध्यात्म में वो असत्य हो गया, क्योंकि परिवर्तनशील है. आत्मा अपरिवर्तनशील, क्योंकि प्रकृति के संग में आकर के बदलती नहीं है, कटती नहीं है, जलती नहीं, सूखती नहीं है. किसी को जिंदा भी जला दो तो शरीर तो जल जाएगा पर आत्मा तो उड़ जाएगी. इसलिए मैं एक अविनाशी आत्मा हूं, ये एक निश्चय खुद में करना, ये बहुत बड़ा सत्य को समझना है. और मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं, जो परमात्मा हमें फिर से एक नया जीवन दे रहे हैं, इस समय जीवन में एक परिवर्तन दे रहे हैं. और फिर ये प्रकृति बदलकर फिर से कैसे सतो प्रधान बन जाएगी. तो इसीलिए जैसे द्वापर युग शुरू हुआ अनेक धर्म आए, अब्राहम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये सब 2500 ईयर्स के अंदर ही है. बिफोर दैट नहीं, उसके पहले तो एक आदि सनातन धर्म था देवी देवताओं का. 2500 साल, 2500 ईयर्स के अंदर ये जो इतिहास हम पढ़ते हैं, हमारे पास इतिहास भी केवल 2500 ईयर्स का ही है, उसके पहले का है ही नहीं. क्योंकि जैसे द्वापर युग शुरू होता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है संसार में. जैसे देवताएं वाम मार्ग में गए, हलचल चालू हुई, वो आत्माएं विकारों के वश हुई, सतो रजो स्थिति, रजो से फिर तमो स्थिति आती गई. परंतु उन धर्म पिताओं ने आके इस सृष्टि को थमाया, और जिस समय जिसकी जरूरत थी वो वैल्यूज उन्होंने बताए. अब्राहम जब आया तो उस समय दिखाते हैं कि बहुत आइडल वर्शिप था, और कैसे अब्राहम ने आकर के वो आइडल वर्शिप को खत्म किया और एक अल्लाह है, एक है, उसका ज्ञान दिया. फिर मोहम्मद ने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया. क्राइस्ट आया तब आपस में इतना नफरत का भाव था, सबके अंदर एक नफरत थी, तो क्राइस्ट ने लव सिखाया. लव दाई नेबर, गॉड इज लव, गॉड इज लव, बस ये सिखाया. बुद्ध ने अहिंसा सिखाई, भगवान ईश्वर के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। किसी ने उससे पूछा कि ईश्वर है, उसने कहा नहीं है। फिर किसी ने पूछा ईश्वर नहीं है, तो बोला है। क्योंकि उसने कर्म को महत्व दिया, कर्म। ईश्वर को छोड़ो, ईश्वर पर झगड़े मत करो, कर्म करो। तो देखते जितने भी धर्म पिताएं आए, सब ने समय के अनुसार वो प्रचार किया और उनका धर्म स्थापन हो गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो धर्म का प्रचार धर्म पिताओं ने किया दुनिया को थमाने के लिए, वो कलयुग अंत में आकर के सब कुछ उलट हो गया है। गॉड इज लव, कहां रहा गॉड इज लव, वो प्रेम कहां रहा, आपस में लड़ते ही रहते हैं। अहिंसा कहां रही, आज सबसे हिंसक अगर हम देखते हैं ना, ये चाइनीज लोग हैं सबसे। आप जाइए क्या क्या खाते हैं, हम तो हैरान हो गए। चाइना में जाकर, वियतनाम में जाकर, हम तो कई देशों में गए हैं, कोरिया, साउथ कोरिया गए, वियतनाम गए, और चाइना भी गए हैं, ये जहां भी कई जगह गए, क्या क्या खाते हैं, और कहां अहिंसा का प्रचार किया बुद्ध ने। तो देखिए, तो जो धर्म आए वो भी धर्म कैसे धीरे धीरे अधर्म बनते गए हैं, और भारत की संस्कृति तो हम भूल ही गए हैं, कहां के कहां पहुंच गए हैं हम। वेस्टर्न कल्चर ने पूरा अपना प्रभाव डाला है भारत के ऊपर, एंड धीरे धीरे हम देख रहे हैं वेस्ट इज ट्राइंग टू फॉलो द ईस्ट एंड ईस्ट इज ट्राइंग टू फॉलो द वेस्ट। आज ये स्थिति आ गई है। तो इसीलिए अभी जो समय चल रहा है, परमात्मा कहते हैं ये संगम का काल है। तो इसीलिए स्वस्तिका का बहुत सुंदर अर्थ यहां दिया है। व्हाट द स्वस्तिका स्टैंड फॉर, चार उसमें भाग दिखाते, इक्वल इक्वल भाग दिखाते हैं। लेकिन उसमें आप देखेंगे स्वस्तिका में जो राइट साइड है वो राइटियसनेस, वो सतयुग का है, और धीरे धीरे वो राइटियसनेस में थोड़ी गिरावट आती है त्रेता, क्योंकि 16 कला से 14 कला बन गए, और द्वापर जैसे आया तो फिर लेफ्ट लेफ्ट चालू हो गया, और फिर उसी लेफ्ट का ही चरम स्वरूप कलयुग, और फिर वापस राइटियसनेस पर आना है। तो राइटियसनेस पर आने के लिए परमात्मा ने कैसे अब इस पुरुषोत्तम संगम युग की स्थापना की है, जो कलयुग के अंत का समय है। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संगम समय, जबकि परमात्मा आते हैं। इसलिए संगम का बड़ा महत्व है, जहां नदियों का मिलन होता है वो भी संगम है, इलाहाबाद में, प्रयाग में कुंभ का मेला लगता है, तो नदी सागर का भी संगम होता है। आप कलकत्ता में जाइए डायमंड हार्बर, जहां गंगा, ब्रह्मपुत्रा सब सागर में मिलते हैं, तो उसका भी कितना बड़ा मेला लगता है। तो संगम माना जहां नदियों का मिलन या नदी सागर का मिलन, इसका बहुत बड़ा मान है। वास्तव में ये युगों का मिलन है, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन के बीच में संगम पर परमात्मा का आगमन होता है, और परमात्मा हमें फिर से आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, कर्म का ज्ञान देकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं, जिसको कहा नर नारायण बनता है, नारी लक्ष्मी बनती है। तो अभी कौन सा समय चल रहा है, अभी कलयुग नहीं है, अभी ये संगम युग चल रहा है। पर जिनको नहीं पता, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, कर्मों का ज्ञान नहीं है, समय का ज्ञान नहीं है, वो तो यही कहेंगे अभी तो कलयुग है। और यहां तक कह देते हैं कलयुग तो अभी बच्चा है, हम कहते कलयुग बच्चा नहीं है, कलयुग का थोड़ा सा समय बचा है। यू नो, बच्चा और बचा। आपकी उम्र अगर 60 वर्ष की हो मानो, और 5 साल की जब आप थे, आपने लिखना शुरू किया, स्कूल में गए और आपको लिखना सिखाया गया, और आपने उस समय अपनी नोटबुक में लिखा मैं 5 साल का हूं, लेकिन अभी 55 साल के बाद आपको वो नोटबुक हाथ में आ गई और उसमें आपके ही अक्षर है मैं 5 साल का हूं, तो अभी भी 5 साल के हैं क्या? अभी तो 55 साल के बाद तो 60 साल के हो गए। तो शास्त्रों में अगर लिखा है कलयुग बच्चा है, तो हो सकता है जब बच्चा था तब ये शास्त्र लिखे गए थे, और आज तो कलयुग का ऐसा अंत आ गया है जो हम चाहते हैं कि राम राज्य हो। अगर सचमुच ये राम राज्य होता तो चाहना क्यों रखते? राम राज्य की चाहना बापू गांधी जी ने की, एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक राज्य हो, एक हो, एक राम राज्य माना सब एक, जहाँ शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, यथा राजा तथा प्रजा सब सुखी थे, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है, उस राम राज्य में। और आजकल तो कहेंगे हाँ अखबारों में खूब आता है राम का नाम बदनाम हो गया है, हो गया ना नाम बदनाम, ये जो भी जेल में गए हैं गुरु लोग राम के नाम से। तो कहाँ वो राम राज्य था, लेकिन आज वो राम राज्य रावण राज्य हो गया है। रावण के लिए दिखाते उसके 10 सिर थे, 10 सिर किसी मनुष्य के थोड़ी हो सकते हैं। अगर 10 सिर हो तो वो खाएगा किस मुख से, सोएगा कैसे, बोलेगा कौन से मुख से, क्या क्या ये सब कैसे करेगा 10 सिर हो तो। लेकिन ये रावण प्रतीक है, विकारों का प्रतीक है, 5 विकार नर और 5 विकार नारी में ये रावण का राज्य आज सारे संसार में है, केवल एक लंका में नहीं है। श्रीलंका में कोई कहे वहां रावण का राज्य था, सोने की लंका थी, तो श्रीलंका वालों कहते हमारे पास कोई ऐसा इतिहास नहीं है। तो रावण को एक आइलैंड की बात नहीं है जहां पर लंका पर रावण का राज्य था, पर सारी सृष्टि लंका है। अगर आप जितनी भी धरती है नक्शे में, उसमें 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा धरती है, पर वो एक समय था, ज्योग्राफी में बताते कि ये सब एक था, इट वॉज एन आइलैंड सराउंडेड अराउंड बाय वॉटर। तो मानो सारा संसार ही अभी रावण का राज्य है, जहां विकारों का बोलबाला है, घर घर नर्क बन गया है। अभी इस रावण को खत्म करना के लिए राम को आना पड़ता है, और कौन सा राम? वो त्रेता वाला राम नहीं, वो दशरथ का बेटा नहीं। कहा जाता है एक राम है जिस जो दशरथ का बेटा, वो श्री राम। एक राम जो घट घट वासा, आत्मा को भी राम कहते, क्योंकि परमात्मा के गुण तो है ना, उस हिसाब से गुणों का अंश तो है आत्मा में, इसलिए आत्मा राम कहते हैं। एक राम जो सकल पसारा, ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि रची कहते हैं। एक राम जो जग से न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घट घट वासा आत्मा, एक राम जो सकल पसारा जिसने सृष्टि रची, और एक राम जो जग से न्यारा परमात्मा। जब हम रामेश्वर कहते हैं तो श्री राम का भी वो ईश्वर निराकार शिव परमात्मा, और वो आकर के कैसे रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं, और कैसे कराते हैं? राम रावण के युद्ध में बताते हैं कि राम ने बहुत कोशिश की रावण के सिर काटने की, लेकिन जैसे वो एक सिर काटता था फिर वापस आ जाता था सिर, रावण मरता ही नहीं था। लेकिन जब विभीषण ने उसको कहा कि हे राम, ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, उसकी उसका जो जीवन अमृत धारा है उसकी नाभि में है, नाभि में आप तीर मारो तब रावण मरेगा, ये केवल विभीषण को पता था जो उसका भाई था। इसीलिए कहते हैं ना एक कहावत है कि क्या है, घर की लंका ढाए, हाँ तो घर का भेदी लंका ढाए, वो घर का भेदी हो गया क्योंकि था तो रावण कुल का ही, लेकिन राम को उसी ने वो युक्ति बताई। तो तो सिर माना ये विकारों के सिर है, वो ऐसे विकार नहीं कटते हैं, लेकिन जब दे अभिमान को खत्म किया जिसके कारण ये विकार आए, ये दे अभिमान की बजाय आत्माभिमानी स्थिति अनुभव की, मैं आत्मा हूं, आत्मा को देख रही हूं, तो ऑटोमेटिकली ये विकार खत्म हो जाएंगे, पवित्र दृष्टि बन जाएगी। और जैसे ही हम विकारों को जीतते हैं, हम महसूस करते संसार बदल जाता है। तो आज अगर कोई कई कलयुग बच्चा है, हम कहते हैं इतना बूढ़ा हो गया है, इतना वो अंतिम श्वास ले रहा है, वेंटिलेटर पर किसको रखते हैं जब अंतिम श्वास है, पर कब तक वो बोरोड ब्रेथ पर रहेगा? क्यों? क्योंकि आज धरती जल रही है, एक तरफ है विकारों की आग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आग के रूप में है, और दूसरी तरफ है बमों की आग। ये दोनों आग नीचे से भी और ऊपर से भी आग ही आग है। ये कब तक ये आग ऐसे ही रहेगी? इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं भी कुंभकर्ण की नींद से जागो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि शिव परमात्मा इस सृष्टि मंच पर आ गए हैं। तो कई कहते कैसे आए हैं, तो हम कहते उस परम धाम से परमात्मा इस सृष्टि रंग मंच पर आए हैं। और किसके तन में? पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में। कई जब ब्रह्मा बाबा का चित्र देखते हैं ना यहाँ, तो कई पूछते ये आपका गुरु है? हम कहते गुरु नहीं है, यहाँ कोई गुरु की गद्दी नहीं है, जो एक गुरु के बाद दूसरा गुरु बैठेगा, नहीं। तो क्या आप इनको भगवान मानते? हम कहते भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानते, भगवान तो एक है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो सदा शिव है। पर कैसे इनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी पहचान दी और इनको कई साक्षात्कार कराए, विनाश का साक्षात्कार कराया, कलयुगी दुनिया के विनाश का, और एक सतयुगी दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार कराया, और उनको यह एक आकाशवाणी हुई, लखीराज, उनका नाम ओरिजिनल नाम देख नाम लखीराज था, लेखराज, लखीराज उठो जागो, अब इस कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आनी है और आपको बनानी है। और बाबा ने इतना सुंदर सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया और ये कर्तव्य उनको दिया कि अभी सबको ये संदेश दो कि अब ये सृष्टि परिवर्तन होने वाली है, एनहाइलेशन कभी नहीं होगा, प्रलय कभी नहीं होगी कि सब नष्ट हो जाए, नहीं, लेकिन एक परिवर्तन होगा, नर नारायण बनेगा, नारी लक्ष्मी बनेगी। इसके लिए परमात्मा ने ये यज्ञ रचा है। जैसे यज्ञ कुंड में हम स्वाहा करते ना, जब भी कोई आपत आती है तो यज्ञ रचते हैं, और उस यज्ञ में जब तिल घी स्वाहा किया जाता है, तो परमात्मा ने ये बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। और इस यज्ञ में परमात्मा हमें क्या कहते हैं, जब तिल घी माना, जब माना ये शरीर, ये शरीर होम दो, अर्थात परमात्मा का समझो, आप निमित्त बन जाओ, परमात्मा आपको शक्ति दे रहा है शरीर द्वारा कार्य करने की। और मन माना तिल, जैसे जब तिल, तिल सूक्ष्म होता है, तो मन भी परमात्मा का उसको दे दो, उनमें लगाओ मन। और ये धन भी ईश्वर का समझो, आप केवल अपने को ट्रस्टी समझो, ये सब ईश्वर का है, गाते तो है ये तन मन धन सब तेरा। तो सचमुच इस समय हम ये महसूस करते हैं ये सब परमात्मा का है, और परमात्मा हमें कहते हैं अब इसमें ट्रस्टी बन करके कार्य करो, इस तन को सेवा में लगाओ, मन को भी सेवा में लगाओ, धन को भी सेवा में लगाओ। और जितना हम इसको सेवा में लगाएंगे, ये कर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी। और दूसरा, यज्ञ के अंदर स्वाहा किया जाता है, तो परमात्मा कहते क्या स्वाहा करना है, अपने विकारों को स्वाहा करना है। जैसे कोई तीर्थ स्थान पर जाता है तो कुछ न कुछ दान करता है, करते हैं ना दान, तो यहाँ परमात्मा हमसे दान मांग रहे हैं। कौन सा दान मांग रहे हैं? परमात्मा कहते ये विकारों का दान दो, ये खोटे पैसे हैं, ये कोई काम के नहीं है। तो हम कहते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। तो हम कहते हैं सवेरे वाली गाड़ी से क्या जाएंगे, तो क्या दे के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, ये खोटे पैसे दे के जाओ। तैयार हो खोटे पैसे देने के लिए? जो तैयार है वो हाथ उठाएं। अच्छा, सारे तैयार है, वेरी गुड। ये तो आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत सफल हुई, अपने लिए ताली बजाओ। हाँ, अपने लिए क्यों नहीं बजाओ। तो कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। तो लेके क्या जाएंगे? बहुत कुछ आपको मिला है खजाना, लेकिन एक संकल्प करके जाएंगे। और वो संकल्प है, हम कहते पांच खोटे पैसे देके जाओ और एक आना लेकर जाओ। एक आना, आना माना एक बार रोज सेवा केंद्र पर जाना, ये है एक आना। बस ये आप प्रतिज्ञा करके जाओ, संकल्प करते जाओ, तो आपका जीवन धन्य बन जाएगा। आप सचमुच इस संसार को बदल करके इसको स्वर्ग जरूर बनाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, भले जोर से अपने लिए ताली बजाओ, क्यों नहीं बजाओ। अभी हम फिर से दो मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।